نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزل الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اپنی بات کے سننے اور سنانے کے لیے یہاں آنے کا بیٹھنے کا موقع دیا. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ بہت ہی اہم موضوع ہے. پہلے تو اس کی اہمیت بتا دوں کہ ایمان مفصل اور ایمان مجمل کا نام تو سنا ہوگا نا، تو ایمان کی جو مختلف قسمیں ہیں نا، جس کو ماننا اور جس پر ایمان لانا ہمارا فرض بنتا ہے، اس میں سے ایک ایمان بالقدر ہے. یعنی ایک مسلمان تقدیر پر ایمان لائے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. جس طرح اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری رسول ماننا، اسی طرح سے اللہ تعالیٰ کے آسمان پہ ہونے کو ماننا، جنت اور جہنم کو ماننا، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا، ریزریکشن کو ماننا فرض ہے، اسی طرح تقدیر کو ماننا بھی فرض ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تقدیر، قسمت، اس کے بارے میں ہر مذہب والے اور ہر دور کے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوال ہیں. مثلا چند سوال میں خود ہی اٹھاؤں گی پھر تاکہ ان کا جواب آپ لوگ اس ٹاک سے لے سکیں. تو پہلی بات آپ دیکھیے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ پہلے لکھ دیا ہے تو پھر ہماری کوشش سے کیا ہوگا، ہے یہ کوشچن؟ پھر ایک سوال یہ آتا ہے کہ جب تقدیر کا پھندہ ہمارے گلے میں ڈال دیا تو تدبیر کی کیا ضرورت ہے؟ پھر اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی، جب اللہ نے جنت میں ڈالنا ہوگا ڈال دے گا، ہماری نمازوں سے کیا ہوتا ہے؟ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی، جب ہم مجبور کر دیے گئے تو پھر اب ایسے ہی بس ایک کھیل ہے سارا. اور اس طرح کے بعض وقت لوگ اتنا زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان اور اس کی ذات میں غلط طریقے سے بات کرنے لگتے ہیں. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ ایمان بالقدر کی کیا حیثیت ہے اور اس کو کیا کہتے ہیں. تو چار چیزیں ہوتی ہیں تقدیر پر ایمان لانے کی، یعنی دیر آر فور پلرس. اب انشاءاللہ ہم بیچ میں تھوڑی دیر کے بعد انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں گے، تو آپ سب نے اردو میں بھی سمجھنا ہے اور بعد میں انشاءاللہ آپ کو انگلش میں بھی تھوڑا سا ملے گا. تو تقدیر پر ایمان جو لانا ہے نا، اس کے چار مختلف پہلو ہیں. جیسے یہ ٹیبل ہے تو اس کی فور لیگز ہیں نا، عموماً ایک میز کی چار ٹانگیں ہوتی ہیں. اسی طرح تقدیر پر ایمان لانے کے چار ارکان ہیں، اور جو ان چاروں پر ایمان لے آئے گا، بس سمجھ لیجئے کہ اس کا ایمان بالقدر یا تقدیر پر ایمان مکمل ہے. اگر چار میں سے تین کو مانتا ہے ایک کو نہیں مانتا، تو سمجھے کہ ایک ٹانگ ٹوٹ جائے گی تو ٹیبل سیدھا نہیں رہے گا. دو پہ نہیں لاتا تو پھر تو اور ہی خطرہ ہے. اور اگر آپ سوچیے کسی ٹیبل کی صرف ایک ٹانگ رہ جائے اور تین نہ رہے، تو پھر وہ تو بالکل بھی سیدھا نہیں رہے گا. بالکل اسی طرح سے یہ چار اہم چیزیں، اس کو نوٹ کیجئے گا. اس کے بعد پھر اسی کے اندر سے بہت ساری چیزیں ہمیں سمجھ آئیں گی. پہلی چیز یہ کہ اللہ تعالیٰ کے علم کامل پر ایمان لانا، یعنی ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا علم مکمل ہے. میں آپ سے پوچھوں کہ آپ تھوڑی دیر پہلے گھر سے آئی ہیں، آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کیا کہیں گے کہ وہ گھر میں ہوں گے، ایک کو سوئمنگ پہ جانا تھا، دوسرے کو ادھر تھا. لیکن کیا آپ اور میں 100% اس وقت یہاں بیٹھ کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا بچہ گھر کے لاؤنج میں اس صوفے پہ بیٹھا ہے؟ وی کینٹ. گیجٹس یوز تو کر کے بندہ کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ تم کیمرے کے ساتھ آج سیٹلائٹ کے تھرو بہت ساری چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں نا، لیکن بغیر کسی گیجٹ کے میں اور آپ پورا علم نہیں رکھتے. ایون اگر آپ کسی سے فون پہ بات بھی کر رہے ہیں اور آپ اس کی پوری بات سن بھی رہے، پھر بھی آپ کو نہیں پتا کہ وہ اس وقت کدھر کھڑا ہے. آج دیکھیے وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ سائنس نے وہ چیزیں ایجاد کر دی، آپ کا سیل فون کہاں گر گیا آپ ڈھونڈ لیں گے، ہے نا؟ آپ اپنی لوکیشن ڈھونڈ لیتے ہیں، آپ جہاں بیٹھے ہیں اس وقت آپ کے ہسبینڈ کدھر ہیں. پہلے تو ہسبینڈ بھی بےچارے اچھے رہتے تھے، بیویوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہاں کہاں سے گھوم کے آ جاتے ہیں. آج بیگم پوچھتے ہیں یہ اس وقت وہاں کیا کر رہے تھے، تمہیں کس نے بتایا؟ وہ مجھے فیس بک سے پتہ چل گیا، اور مجھے تو آپ کے سیل فون سے پتہ چل گیا آپ کہاں گھوم کے آئے. رائٹ، ایسا ہوتا ہے نا. تو مشینوں کی جتنی زیادہ بھرمار ہوئی نا، اتنا ہمارا عقائد کے اندر ضعف آ گیا. یعنی ہمارے عقیدوں کے اندر جو بگاڑ آیا نا، उसमें साइंस की तरक्की के साथ आया, हालांकि वो साइंस बहुत अच्छी चीज़ है, उसको आगे जाकर डिफाइन करूंगी। तो अल्लाह ताला का इल्म क्या है, उसको सेलफोन की जरूरत नहीं, उसको फेसबुक की, फेस टाइम की, उसको व्हाट्सएप, वाइबर, स्काइप, उसको कुछ भी यूज़ करने की जरूरत नहीं। मैं और आप अगर इस कमरे में बंद कर दिए जाएं, हाथ में कोई नेट ना हो, कुछ ना हो, तो हम तो ये भी नहीं जान सकते कि इस घर के ऊपर वाले फ्लोर में क्या हो रहा है। कुछ आवाज़ें सुनकर हम मे भी गेस कर सकते हैं कि ऊपर कोई है, लेकिन हम में से कोई ये दावा नहीं कर सकता कि हमारा इल्म पूरा है। तो पहली चीज़ ध्यान में रख लीजिएगा, अल्लाह ताला का इल्म कामिल है। अल्लाह सुब्हान ताला हैज़ अ साउंड नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज है, और इसका इल्म हर चीज़ के ऊपर छाया हुआ है। आयतुल कुर्सी में हम क्या पढ़ते हैं कि वला यहीतून बिशैय मिन इल्मिही इल्ला बिमा शा, ठीक है। तो अल्लाह ताला का इल्म छाया हुआ है। और फिर ये भी नोट कीजिएगा कि इस बात को भी हम जानते हैं कि वो जानता है जो होने वाला है और जो नहीं होने वाला, और जब कुछ होगा तो क्या कैफियत होगी। अब होने वाले से जहन में तसव्वुर में लाइए, बच्चा बच्चा पैदा होता है ना, आज अल्ट्रासाउंड के जरिए 4-5 माह के बाद बता सकते हैं। पहली बात है कि वो मशीनों के जरिए बताते हैं, दूसरी बात है कि 100% श्योर है कैसे ही हो। हमारे अपने साथियों में एक बच्ची पैदा हुई तो पता चला कि बच्ची के जिस्म में कुछ एबनॉर्मेलिटी है, और उस बच्ची को ऑपरेट करवाया गया सी सेक्शन के साथ। अब वो बच्ची 10-12 दिन हॉस्पिटल में रही, उसके बाद बेचारी पूरी हो गई। तो जो उसकी माँ थी ना, वो बहुत गुस्से में थी कि डॉक्टर्स हर 15 दिन के बाद मेरा चेकअप कर रहे थे, और हर वक्त उन्होंने मुझे यही तसल्ली दी कि बच्चा बिल्कुल ठीक है और एवरी थिंग इज़ फाइन एंड दिस एंड दैट। हालांकि जो बच्चे में बीमारी थी वो माँ के पेट से थी। तो उसका ये था कि अगर मुझे पता चलता कि मेरी इस बच्ची ने जिंदा नहीं रहना, तो कम से कम अपना पेट तो ना कटवाती। बात समझ रहे हैं ना। अब उन्होंने पूरी कोशिश की। अब क्या उन्होंने जान के नहीं बताया? नहीं, इंसानी चीज़ों की, इंसानों की, मशीनों की लिमिट्स हैं, लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला की लिमिट नहीं है। फिर आप देखिए, आजकल अल्ट्रासाउंड तो सिर्फ यही बताते हैं ना कि बेटा होगा कि बेटी, कैसा होगा, गोरा होगा, काला होगा, शायद आने वाले दौर में ये भी पता चल जाए, पॉसिबल है। लेकिन सच बताइए, आप सबके जो बच्चे हैं, क्या आप अपने बच्चे के पैदा होने से पहले क्या अभी भी कह सकती हैं कि कल ये बच्चा कैसा होगा, ये दुनिया में क्या करेगा? नहीं पता ना। कोई माँ 9 महीने पेट में रखने के बावजूद भी अपने बच्चे के बारे में ये नहीं कह सकती कि मेरा ये बच्चा पैदा होने के बाद कैसा होगा, आंखें कैसी होंगी, नाक कैसा होगा, फिर इस बच्चे का ट्रेंड क्या होगा, ये बहुत जीनियस बनेगा या दुनिया में जाएगा, पढ़ेगा, क्या नहीं पता ना। जब होता है तब हमें पता चलता है। अल्लाह सुबहाना ताला को उस दिन भी पता था जिस दिन ये दुनिया नहीं बनी थी। सही हदीसों से हमें ये बात पता चलती है कि अल्लाह सुबहाना ताला ने सबसे पहले इस दुनिया में क्या बनाया। सबसे पहले देखिए, एवरी थिंग इज़ क्रिएटेड बाई अल्लाह सुबहाना ताला, इंसान, जिन, फरिश्ते, पहाड़, दरिया, समंदर, सब कुछ। सबसे पहले क्या पैदा किया? अल्लाह सुबहाना ताला ने सबसे पहले कलम बनाया। बुखारी की रिवायत है, कलम, नून वल कलम इबमा यस्तरून। फिर कलम बना के उसको कहा उक्तुब, इंग्लिश में कैसे कहेंगे, राइट। कलम बनाकर उसको कहा लिखो, और फिर उसके जरिए सारी दुनिया के लोगों, जानवरों, परिंदों, उनकी किस्मत लिखवाई। फिर जो सब कुछ लिखवाया ना, तो सब लिखवा कर अल्लाह ताला ने उसको अपने पास लोहे महफूज, कहते हैं लोह, कहते हैं तख्ती को, महफूज मैंने वेरी सिक्योर्ड। अल्लाह ताला ने सबसे पहले जब कलम बनवाया, कलम से लिखवाया, और लिखने के बाद मेरी आपकी, यानी आज देखिए ना 27 दिसंबर 2015 है, 7:59 हुए हैं, और हम लोग टोरंटो के एक हिस्से मिल्टन में बैठे हुए हैं। सच बताइए, आज सुबह तक भी आप में से हर एक को पता था आप इधर आएंगे। अब आप देखिए, बस आप आधी बात तो समझ गए अल्हम्दुलिल्लाह। इवन 24 आवर्स पहले, क्या 12 आवर्स पहले भी हम में से हर एक को नहीं पता था कि आज इस वक्त हम यहाँ ये लेक्चर सुन रहे होंगे। अब आप देखिए, ये है इंसान के इल्म की कमी। देखिए, इंसान कितना कम इल्म है, हम इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। मैं आपको सच बताऊं, हमें अभी भी ये नहीं पता कि 1 घंटे बाद क्या होगा। आज मैं आपको बहुत सारी स्टोरीज भी सुनाना चाहूंगी अगर वक्त हुआ। उसी में से एक स्टोरी आज सुबह मुझे किसी ने सुनाई कि उनके भाई का बेटा 25 ईयर्स ओल्ड, पाकिस्तान में रहता, घर में है, और बिल्कुल घर के सामने मस्जिद है। तो इनकी भाभी इनको कहती हैं कि मेरी आदत क्या है कि जब मैं सुबह फजर के लिए उठती हूँ, फिर मैं सारे बच्चों के कमरों में जाके उनको कहती हूँ उठो नमाज पढ़ो। एक दिन वो उठी हैं तो बच्चे सब अपने सोते हैं, कहती है कि पता नहीं मुझे क्या हुआ, मेरे नींद का गलबा था, मेरे जहन में क्या था, मैं अपनी आदत के मुताबिक कहीं मैं उस कमरे में नहीं गई, मैं दोबारा आके सो गई। जब सो गई हैं तो 10 बजे के करीब इनकी आंख खुली है और कहती है कि मैंने अपनी आदत के मुताबिक उठी है, तो जो भी था मैंने कहा जाओ सबको उठाओ, किधर है, सोते ना रह जाए, नाश्ता करे, जो सुबह उठ के घरों का आलम होता है। तो कहती है दूसरा कोई बच्चा अपने मेरे उस बेटे के कमरे में गया उसको बुलाने, और एकदम उसकी वहाँ से चीख की आवाज़ आई है। 25 ईयर्स का लड़का, यंग, नथिंग, कुछ भी नहीं उसको, ही इज डेड। क्या हुआ, कैसे हुआ, डॉक्टर्स को बुलाया, डॉक्टर कहता ही डाइड 3 आवर्स, 3 घंटे पहले, और वही 3 घंटे जो नमाज के बाद के थे। अब ये इस बात पे रो रही है कि मैं रोज जाती थी, आज मैं क्यों नहीं गई। कहते सब चीज़ जल्दी हुई और जोहर में उसी मस्जिद में उसका जनाजा हुआ। जब जनाजा उस बच्चे का हुआ है, चेहरा दिखाया, तो उनमें से कोई एक आदमी या कोई बोला है, कहता है ये फजर में मेरे साथ खड़ा नमाज पढ़ रहा था, फजर पड़ी जिस मस्जिद में, उसी मस्जिद में जोहर के वक्त उस बच्चे का जनाजा हुआ। कहती उस बात से माँ कहती मुझे पता चला कि मस्जिद में नमाज पढ़ के आया था, इसको इतना भी नहीं पता कि वो उठा के नहीं। आप क्या बात करते हैं, माँ की बात है, कोई माँ रोक सकती है? अब आप मुझे बताइए, ये बात है, ये एक और इसी तरह का वाक्य मैंने एक स्पीकर है उनकी जुबान से सुना था कि एक बच्चा था, तो ये सऊदी अरब की बात है जो भी मैं सुनाने लगी हूँ, कि बच्चा जो था उसने कहीं जाना था, अर्ली मॉर्निंग उसकी फ्लाइट थी, माँ को कहता है कि मैंने अलार्म सेट कर दिया, लेकिन अगर मेरी आँख खोले ना खोले मुझे उठा दीजिएगा, क्योंकि मैंने फ़लाँ वक्त के जहाज़ पे जाना है। बच्चा ये कहकर सो गया है, बच्चे से मेरा यंग लड़का ही होगा ना, ऑफकोर्स जो भी है। माँ ने ख्वाब में क्या देखा कि जिस फ्लाइट में मेरा बेटा जाने वाला था वो क्रैश हो गई है, और एकदम खौफ से उसकी आंख खुल गई है। अब वो माँ थी ना, वहम पड़ गया दिल को कि पता नहीं इस जहाज को कुछ होना है, ये है वो है। अब उसको ये था कि अगर मैं अपने बेटे को कहूँगी कि इस फ्लाइट में ना जाओ, तो वो मुझे दकियानूसी और बैकवर्ड कहेगा और वो मेरी बात नहीं सुनेगा, राइट। कहने लगी एक ही तरीका है, मैं अलार्म बंद कर देती हूँ, ये सोता रहेगा, फ्लाइट निकल जाएगी, जब निकल जाएगी तो बात ख़त्म हो जाएगी। बात समझ गया ना। खैर उसने उसका अलार्म बंद किया रखा और वही हुआ कि बच्चा सोता रहा, और माँ के दिल को ना एक खुदबुदी लगी हुई थी कि कुछ होना है, कुछ होना है, रेडियो खोल के बैठ गई। एग्जैक्टली वही हुआ। अल्लाह ख्वाबों के लिए सच्चे दिखा देता है। वो जहाज़ जिसमें बेटा नहीं गया वो क्रैश हो गया। अब ये बात सुन के वो खुशी के मारे उठ के भागी कि अब तो बेटा मुझे कुछ नहीं कहेगा ना, कि मैं इसको बताऊं देखो मैंने तुम्हें मौत से बचा लिया। दौड़ी भी उसके कमरे में गई है, और जब उसको नॉक कर रही है, खोल रही है, पता चला अपने बेड पे डेथ हो चुकी है उसकी। अब मुझे बताइए कहाँ सेटेलाइट्स, कहाँ आपके गैजेट्स, कहाँ आपकी ये, कहाँ आपकी वो। मेरा आपका इल्म तो इतना भी नहीं है कि हम खुशी से सोएंगे नहीं, बैठे बैठे लड़ाई नहीं हो जाती मियाँ से, छोटी सी बात पे घर का माहौल खराब नहीं हो जाता? आप देखिए शादियों वाले घरों में बच्चा गिरता है तो खुशी गम में बदलती है ना। अब जो बात है ना, इसको गौर से समझिएगा, मैं सोचती हूँ कि अगर हमारा अल्लाह की ज़ात को असेस करना, अल्लाह ताला की क्वालिटीज़, उसकी करेक्टरिस्टिक्स, व्हाट ही कैन डू, हाउ बिग ही इज, अगर ये ठीक हो जाए ना, तो किसी एक को एक बार भी ना हमें कहना पड़े कि उठो नमाज़ पढ़ो। आप अपने बच्चों को कहते हैं ना नमाज़ पढ़ो, क्यों कहते हैं आपको पता? क्योंकि आपके बच्चों को अल्लाह की ये खूबी ही नहीं पता, हाउ बिग ही इज अलमाइटी, अल्लाह की ज़ात कितनी है, उसको सब कुछ पता है जो इधर हो रहा है, जो उधर हो रहा है। अब ये जो बात मैंने आपने छेड़ी थी कि हमें तो 1 घंटा का नहीं पता, अल्लाह को ये सब किस वक्त पता था? जिस वक्त उसने ये दुनिया बनाई। अब एक जुमला मैं अक्सर तकदीर के बारे में बोलती हूँ तो आपको भी बता देती हूँ कि तकदीर हुक्म इलाही नहीं है, तकदीर इल्म इलाही है। अल्लाह सुबहान तआला का नॉलेज, उसकी विजडम इतनी ज़्यादा है कि दुनिया बनाते हुए भी उसको ये पता था, उस दिन भी पता था। फील करें चुटकी काट के कि 27 दिसंबर 2015 8:06 पे ये सिस्टर इस घर में बैठ ये दर्स सुन रही होंगी। अल्लाह को उस दिन भी पता था जिस दिन दुनिया बनी, और दुनिया बने हुए कितने साल, बिलियन ट्रिलियन ट्रिलियन ईयर्स हो गए। तो ये आपका मेरा बिलीफ है कि अल्लाह को सब कुछ पता है। अल्लाह ताला बच्चे को माँ के पेट में ही, जब तकरीबन 4 मंथ्स की प्रेगनेंसी होती है, तो एक फरिश्ते को भेजकर बच्चे का रिस्क, उसकी उम्र, खुशबख्त बदबख्त, जन्नती जहन्नमी होना, ये सब कुछ लिखा देता है। माँ को नहीं पता कि पेट का जो बच्चा, इवन बच्चा गोद में भी है, क्या आपको मुझे पता कि हमारे जो बच्चे उनका क्या होगा? आप इसको एक मिसाल से समझिएगा। आप देखिए कि जब भी किसी के घर बेबी पैदा होता है, कितनी खुशी मनाई जाती है ना। अब बच्चा पैदा हुआ, बिलफर्ज उस बच्चे की तकदीर जो अल्लाह ने छुपाई भी है, ये भी एक अल्लाह सुबहान तआला का बहुत बड़ा रहम है हमारे ऊपर कि उसने तकदीर छुपाई हुई है। हमारा दिल बहुत करता है कि पता चल जाए कल क्या होना है। लोग वो जाते हैं ना जुमियों के पास, क्या होगा कुछ रिसालों में, आपका हफ्ता कैसा गुजरेगा? अल्लाह का लाख शुक्र कीजिए हमें नहीं पता। चलिए सपोज करते हैं एक कपल है, शादी हो गई, 10 साल गुजर गए, बच्चा नहीं हुआ, प्रेगनेंसी हुई, कितनी खुशी हुई, बच्चा हुआ, ठीक है। अच्छा, बच्चा जब दुनिया में आता तो साथ ही हमें एक छोटा सा बुकलेट आ जाता, किसी भी तरह आ जाता कि ये लो भाई, ये इस बच्चे की पूरी ज़िंदगी की कहानी इसमें लिखी हुई है। अब आउट ऑफ क्यूरियसिटी माँ कहती, लो मैं पहले पढ़ लूँ, बाद में जो धक्के खाऊंगी कि स्कूल में जाएगा क्या होगा, ये होगा वो होगा, अगर माँ उसको पढ़ना शुरू कर दे, सब्र तो नहीं करेगी ना। ये बच्चा पैदा होगा, बड़ी खुशी होगी, इधर जाएगा वो स्कूल में पढ़ेगा, इधर जाएगा फिर स्कूल से निकलेगा कॉलेज जाएगा, फिर मेडिकल में जाएगा, फिर दिस एंड दैट, और उसके बाद इसकी शादी होगी, डेट फिक्स होगी, और जिस वक्त ये शादी के लिए जा रहा होगा इसकी गाड़ी को हादसा होगा और ये ऑन द स्पॉट मर जाएगा। बिलफर्ज ऐसा हो सकता है ना, और होता है ऐसा। सच बताइए कि उस बच्चे के पैदा होने की खुशी होगी माँ को या उसकी मौत का गम? ऐसे ऐसे बीसियों वाकया थे हमारे अपने ख़ानदान में। ऐसी एक शादी थी, 10 साल शायद हो गए शादी को, बच्चा नहीं हुआ, फिर उसके बाद बहुत कोशिश करके, जो भी अल्लाह चाहता है, कोई ट्रीटमेंट किया वट एवर, प्रेगनेंसी हो गई, इतना खूबसूरत बच्चा, आइडियल बच्चा वो हुआ, कितनी को ख़ानदान में दोनों घरों में खुशी हुई होगी आप सब जान सकते हैं। लेकिन बाय द टाइम 3 4 महीने में जब बच्चा हुआ तो कुछ फीलिंग्स आने लगी कि समथिंग इज़ रॉन्ग, और शायद मेरा हाल है 2 2.5 साल का होके, वो बच्चा उसमें कोई एबनॉर्मेलिटी थी, तो वो बच्चा माँ के हाथों में चला गया। अब मुझे बताइए जिस दिन 10 साल बाद वो प्रेग्नेंट हुई और जो लोगों ने खुशी की, क्या वो 1.5 2 साल भी उसकी ज़िंदगी के खुशी के रहते? उसको पता होता कि जो बच्चा माँ पेट में रखा हुआ ये मर जाना। दिन रात मैं और आप इसी सदमे से गुजरते हैं कि हमें नहीं पता कल क्या होगा। रिश्ते होके टूटते क्यों हैं? पता चल जाए ये टूटना है तो हम करें क्यों? मंगनी हुई छूट गई, क्यों छूटी? आप किसी जगह बहुत दूर जाते हैं फिर जाके चलते, ओ स्टोर बंद है, अब आपकी इतनी एफर्ट क्यों गई? दिन रात मैं और आप अपनी इस बेबसी का इजहार करते हैं कि हम बहुत छोटे हैं। तो याद रखिए अल्लाह को सब कुछ पता है, और ये जितनी बातें मैं आपको बता रही ना, इसके रेफरेंसेस कुरान में मौजूद हैं। सूरत अल्लाह की आयत 12 है, सूरत तौबा 115 है, सूरत हशर आयत 22 है, सबा 3, सूरत बकरा की आयत 30, और अबू दाऊद की रिवायत है 4713, और सही मुस्लिम में 6737। ये सिर्फ मैंने बोल दिए हैं कि रिकॉर्ड हो जाए, ये सारे रेफरेंसेज हैं जिसकी नज़र से ये बात मैंने कही है, यानी ये मेरी बात नहीं है। तो अभी तक सिर्फ हमने एक चीज़ की है, मैं इसको सम अप करके फिर इंग्लिश में करवाती हूँ, कि अल्लाह सुबहाना ताला का इल्म कामिल है, ही हैज़ अ स्ट्रॉन्ग नॉलेज, आने वाले वक्त का और किसी को नहीं पता, ठीक है। पहली चीज़ तो इसके अंदर से हम अपने लिए थोड़ी सी बातें अमल की ले आते हैं, किसी नजूमी के पास जाना, फॉर्चून टेलर के पास जाना, हाथ दिखाना, किस्मत मालूम कराना, तोते से फाल निकलवाना, ये सब बेकार है। तोते से फाल निकलवाते हैं और वो बेचारा जो फाल निकालने वाला है वो सारा दिन सड़कों की मट्टी और वो जो गंदगी खाता है, हाँ, और वो किस्मत निकालता है। आपने सुना होगा ना पाकिस्तान में, फाल वाले से फाल निकलवा लो, और वो जो तोता लिफाफा पकड़े वो पढ़ते हैं आपको ये होगा ये होगा वो होगा, और कहते हैं कि एक शख्स था तो वो एक दिन गया उसके पास, तो कहने लगा कि जी क्या पूछना है? तो कहने लगा कि मैंने इस तोते से ये पूछना है कि ये किस्मत बताने वाले की अपनी किस्मत कब बदलेगी, ये जो इतने साल से इधर मट्टी में बैठा हुआ है, राइट? तो आइए जरा इसका थोड़ा सा इंग्लिश में सम अप करते हैं।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि शरह ली सदरी यस्सिर ली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली। टुडे आवर टॉपिक इज अल्लाहस वर्ड एंड आवर फेथ। ईमान हैज डिफरेंट थिंग्स। वी हैव टू बिलीव इन ऑल, जस्ट लाइक बिलीव इन अल्लाह, बिलीव इन डे ऑफ जजमेंट, बिलीव इन अनसीन। सिमिलरली वी मस्ट बिलीव इन आवर फेथ। पीपल क्वेश्चन, If fate is written, then why do we have to try things? Pillars of taqdeer, the fate. If you believe in all four, then your iman is complete on Qadr Allah. Number one, believe in Allah's knowledge. He has complete knowledge of everything. We do not have complete knowledge of things. Allah does. Our belief in unseen is shaken now because of few gadgets that we have. Still, we don't know everything. Allah's knowledge is sound. He knows what will happen and what is going to happen. Today, we may say, we can find out if the baby is going to be a boy or a girl with ultrasound's help. Still, we don't know for sure. We still don't know how a baby will look like. He will be tall or short, genius or not. Allah knows it all, even before this dunya was made. There is a hadith in Bukhari, the meaning of which is, the very first thing Allah created is pen. Then He said, Uktub, write. It wrote our fate. And this is stored in a safe place called Lawhi Mahfuz. We don't even know for sure what will we be doing the next moment or next few hours. We still don't know if we will live in next hour or not. There's a story of a young man who died. He did his fajr and passed away before Zuhr. Another young boy, he told his mom to wake him up because he has to catch a flight. She saw a dream that flight is crashing. She decided not to wake him up. And after that, she heard the news and flight was actually did crash. So she went to her son's room to wake him up, to tell him that I saved you, I didn't wake you up and you didn't catch your flight. Only to find out that he was dead in his own bed. If we can know who Allah really is, His power, His majesty, we won't have to make ourselves pray. We would just do it. Taqdeer, the fate, is not His order. Instead, it is His knowledge. He doesn't order things to happen in certain way, but He does have knowledge for all of that. Allah has hidden our fate, and this is also a blessing of Allah subhanahu wa ta'ala. For example, if a baby is born and if a mother is told that this baby will die at a certain age, will she be happy on his birth or will she be sad thinking about his death? Daily we go through this, that we do not know anything. We can make effort to go somewhere not knowing that if the place is open or not. Trying to find out about your future is not right. This knowledge only belongs to Allah subhanahu wa ta'ala.
जी, इतनी सी बात सुनकर आप लोगों के दिल में अल्लाह ताला का कुछ रोब आया, फील होता है ना? क्योंकि हम बस दफ़ा डरते हैं इंटेलिजेंसी से, उनको हमारी बातें पता चल जाती हैं, वो हमारे घर में ही है, उन्होंने मक्खियाँ छोड़ी हुई हैं, जो स्पीकर्स हैं, होती है ना बेकार बातें, और हमारी ईमेल्स चेक होती हैं. आप देखिए कि हम जिसके बारे में ये सुन लेते हैं ना कि इसको हमारा इल्म है, अभी सिर्फ इल्म पर है, तो फिर उसका हमारे दिल में ना रोब आने लगता है. तो क्या हम खुद से चंद सवाल करते हैं कि क्या अल्लाह ताला का रोब है मेरे दिल पर? क्या मुझे अल्लाह ताला से इस सोच के साथ खौफ आता है कि उसको तो सब पता है, क्या जब मैं कोई बुरी बात सोचती हूँ तो मुझे शर्म नहीं आती? अल्लाह को तो हर चीज़ पहले से पता लग जाती है और मुकम्मल इल्म है. आप देखिए हमारी कितनी लड़ाइयाँ और कितने काम सिर्फ इस वजह से होते हैं कि हम रियलिटी नहीं जानते ना. सिर्फ आप अपने घर में बैठ के ना इस पॉइंट पर बाद में सोचिएगा, अभी तो इतना टाइम नहीं है सोचने का, लेकिन बाद में सोचिएगा कि जब मुझे किसी के बारे में इल्म नहीं होता तो उसे क्या बदगुमानी, राइट? फिर हम एज्यूम करते हैं, फिर हम झूठ बोलते हैं क्योंकि हमें नहीं पता होता. फिर हमारे जितने भी रिलेशनशिप है ना, जो हमारे आपस के, उसके बिगाड़ की बहुत बड़ी वजह यह है कि हम एक दूसरे को नहीं जानते. तो मेरा दिल कह रहा है कि हम थोड़ी सी तिलावत सुने और इसको महसूस करना कि अल्लाह ताला की शान कितनी है.
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشمس السماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان
بشے نقذب ربنا ولک الحمد. غور کیا کریں، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں دی ہیں نا اپنے بچوں کے ساتھ گھروں میں رہتے ہوئے. کبھی اس چیز کو دیکھا کریں کہ ہم اپنے رب کی بڑائی کیسے بیان کریں، کیونکہ جب چاہے آپ تقدیر کا موضوع کریں، چاہے آپ کچھ بھی کر لیں، ہم کب بچیں گے؟ हम आज तकदीर के बारे में सारी डिटेल्स लेकर नहीं बचेंगे जब तक हमारा अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक नहीं मजबूत होगा। तो एसोसिएट करना, तो अभी तक पहली चीज़ जिस पे हमने फोकस किया वो क्या है कि अल्लाह ताला को हर चीज़ का इल्म है। आज के बाद जब भी हों अकेले में, और मुझे तो हमेशा अच्छा लगता है कि ये नेचर की तस्वीरें देखना, कि वाकई उसको देख कर ना दिल बंद होता है। इतनी बड़ी ज़ात है, इतना बड़ा है, और मैं उसकी बात नहीं मानती, मैं उसकी कदर नहीं करती। तो जब हमें इस बात का यकीन हो जाता है ना कि अल्लाह सुब्हान तआला को हर चीज़ का इल्म है, तो उसके बाद फिर हमारा काफ़ी मामला खुद ब खुद दुरुस्त होता है।